आप सभी को मेरा नमस्कार। आज वीरेंद्र की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ तीन बार मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला। आज इस मौके पर आप लोगों ने याद किया, इस बात की बहुत खुशी है। तीन कविताएं सुनाना चाहूंगा। पहली कविता है खान बहुरूपिया। खान बहुरूपिया। अब याद करता हूं तो वे आजमगढ़ जिले के थे। हमारे इस इलाके में गर्मियों में आते थे, सब उन्हें खान साहब कहते थे। वह बहुरूपिया थे, तरह तरह के भेष धरने वाले। खेती किसानी के बाद जो समय मिलता था उसमें उस पुश्तैनी पैसे को उन्होंने जिंदा रखा था। हमने उन्हें जटाधारी शिव, पुजारी, मजनू, पोस्टमैन, रावण, इनकम टैक्स का अफसर, पागल खूनी, पटवारी और भूत बनते देखा था बरसों। उनके पीछे सैकड़ों बच्चे होते थे, भागते, उछलते, कूदते। मैं भी उनमें से एक था। सब जानते थे कि वह बहुरूपिया थे। फिर भी जब वह पागल मजनू बनकर गलियों में भागते थे तो क्या आलम होता था। महिलाएं छतों से, बरामदे से, दरवाजे की ओट से उन्हें देखती, हंसती और अफसोस करती। छोटे बच्चे डरकर रोने लगते, तब वे रुककर उन बच्चों के गाल थपथपाते और हाय लैला कहते हुए यह फिल्मी गीत गाते हुए कि तेरी बांकी अदा पर मैं हूं फिदा, तेरी चाहत का दिलबर बयान क्या कहूं। गलियों में ये गीत वे गाते हुए भागते दिखते। शाम होती तो साफ धुले हुए सफेद कुर्ते पाजामे में और सिर पर सफेद गमछा लपेटे, आंखों में सूरमा डाले, मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों के पास बैठे मिलते। वे उनसे अपने देश की खेती बाड़ी के बारे में बातें करते, दूसरे शहरों गांवों के अपने अनुभव सुनाते। लोग उन्हें किस्सागो की तरह देखते और मुग्ध होते। उन्हें देखकर हम यकीन नहीं कर पाते थे कि दोपहर में चिट्ठियां और मनी ऑर्डर के लिए आवाज देने वाला पोस्टमैन यही आदमी था। बचपन के उस बहुरूपीय के चेहरे पर एक नूर था। वे सबको भले लगते। लोग उन्हें ससम्मान अपने दरवाजे पर बैठने को कुर्सी या मोढ़ा देते। बच्चे उन्हें कौतूहल से दूर से देखते। खान साहब उन्हें पास बुलाते, उनके स्कूल और उनकी कक्षाओं की जानकारी लेते, फिर कोई पहाड़ा सुनाने को कहते। खूब मन लगाकर पढ़ो बबुआ कहकर स्नेह से उनका माथा चूमते। वर्षों तक उनका ठिकाना मस्जिद के पास रहने वाले बिलाल मियां का घर रहा। बिलाल मियां ने कभी उनसे रहने के पैसे नहीं लिए। कई साल गुजर गए हैं। 1986 के बाद वे फिर इधर नहीं आए। जब रामानंद सागर रामायण लेकर हमारे घरों के भीतर आए, उस साल के बाद उस बहुरूपीय की हमें कोई खबर नहीं मिली। सोचता हूं सोचता हूं अच्छा हुआ खान साहब आप 1992 के बाद नहीं दिखे। सोचता हूं अच्छा हुआ खान साहब आप 1992 के बाद नहीं दिखे, वरना भगवान शिव के भेष में देखकर किसी भी सिरफिरे का ज्ञान जाग सकता था। वह यह पूछ सकता था कि तुम जटाधारी कैसे बे, तुम कैसे जटाधारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जटाधारी शिव बनने की। मनोरंजन की पारंपरिक दुनिया से धीरे धीरे विदा हो गए हैं अब बहुरूपीय भी। अब उन्हें किसी शहर या गांव में नहीं देखा जाता, वे हमारी दुनिया से जा चुके हैं। अगर खान साहब अभी होंगे तो यकीनन यह बहुरूपिया अपनी 92-93 की उम्र पूरी कर रहा होगा। सोचता हूं क्या उन्हें अपने उन जगहों की याद आती होगी जहां वे अपने जवानी के दिनों में गए होंगे। सोचता हूं क्या उन्हें उन जगहों की याद आती होगी जहां वे अपने जवानी के दिनों में गए होंगे, जहां लोगों ने सामने से उन्हें खान साहब कहकर इज्जत बख्शी होगी, फिर वे खान बहुरूपिया के नाम से मकबूल हो गए होंगे। खान साहब का नंबर भी मिल जाता तो पूछता कि क्या आपको नोनीहाट की याद है। खान साहब का नंबर भी मिल जाता तो पूछता कि क्या आपको नोनीहाट की याद है, खेती बाड़ी कैसी चल रही है, क्या आपके इलाके में भी बारिश कम हो गई है, आप आखिरी बार बहुरूपिया कब बने थे खान साहब, आप आखिरी बार बहुरूपिया कब बने थे। दूसरी कविता है गरीब रिश्तेदार। गरीब रिश्तेदारों के ताजा हाल हमारे पास नहीं होते, उनका जिक्र हमारी बातचीत में नहीं आता। हम हमेशा जल्दी में होते हैं और हमारी गाड़ियां उनके दरवाजों से सीधी गुजर जाती हैं। गरीब रिश्तेदारों के ताजा हाल हमारे पास नहीं होते, उनका जिक्र हमारी बातचीत में नहीं आता। हम हमेशा जल्दी में होते हैं और हमारी गाड़ियां उनके दरवाजों से सीधी गुजर जाती हैं। एक दिन फोन आता है मौसेरे भाई का, पता चलता है मौसी गुजर गई। एक दिन फोन आता है मौसेरे भाई का, पता चलता है मौसी गुजर गई, साल भर से बीमार चल रही थी। वह कहता है दुमका में सभी डॉक्टरों को दिखाया और सरकारी अस्पतालों का हाल तो आप जानती हो भैया, वह बिना पूछे ही बोले जा रहा है। अगले गुरुवार को श्राद्ध कर्म है, आ जाना भैया, अगले गुरुवार को श्राद्ध कर्म है, आ जाना। एक दिन वह लेकर चले आते हैं विवाह का आमंत्रण कार्ड, तब हमें पता चलता है कि जिस लड़के को देखे 11 साल हो गए थे, अगले माह की 7 तारीख को उसका ही विवाह है। वे बड़े भोलेपन से कहते हैं कमाने लगा है, अपना परिवार अब संभाल लेगा। एक दोस्त को जानता हूं अपने शहर के सब्जी बाजार नहीं जाता, उसके बड़े भाई का साला सब्जी बेचता दिख जाता है, उसे लाज बहुत आती है। एक दोस्त को जानता हूं अपने शहर के सब्जी बाजार नहीं जाता, उसके बड़े भाई का साला सब्जी बेचता दिख जाता है, उसे लाज बहुत आती है। अशोक राजपथ से किताबें खरीदकर स्टेशन लौटते हुए दिखे दूर के एक रिश्तेदार। मामा यहां पटना में कैसे, पूछता हूं। बधावासी में वह कह रहे थे ऑटो पलट गया है, पैर टूट गया है बेटे का, पीएमसीएच में भर्ती है, अच्छा हुआ तुम मिल गया बेटा, मैं यहाँ पटना में किसी को नहीं जानता, अच्छा हुआ तुम मिल गया। अरे मामा, मामा मैं भी पटना में किसी को नहीं जानता, हमारा रेल में रिजर्वेशन है, नहीं तो देखने आता। भगवान पर भरोसा रखिए मामा, सब ठीक हो जाएगा, कहता हुआ पिंड छुड़ाता निकल लेता हूं वहां से। हम उनके किसी दुख में शामिल नहीं होना चाहते, उनकी पीड़ा से हमारा दिल ज्यादा पसीजता नहीं, हमें लगता है कि वो हमसे पैसे मांगेंगे, बेकार ही वक्त जाया करेंगे हमारा, हमारी संवेदना में कोई पत्ता उनके लिए बस कुछ ही देर के लिए हिल पाता है। हम उनके किसी दुख में शामिल नहीं होना चाहते, उनकी पीड़ा से हमारा दिल ज्यादा पसीजता नहीं, हमें लगता है वो हमसे पैसे मांगेंगे, बेकार ही वक्त जाया करेंगे हमारा, हमारी संवेदना में कोई पत्ता उनके लिए बस कुछ ही देर के लिए हिल पाता है। गरीब रिश्तेदारों के यहां जाओ तो अपने आंचल से पोंछकर कुर्सी या मोढ़ा आगे करती है एक स्त्री। गरीब रिश्तेदारों के यहां जाओ तो अपने आंचल से पोंछकर कुर्सी या मोढ़ा आगे करती है एक स्त्री और पूछती है पूरे घर का हाल। खूब सारे दूध की मीठी हो गई चाय आगे करती है और पूरा घर उत्सुकता से चेहरा तकता रहता है हमारा। वे कहते हैं अरे कभी कभार आ जाया करो, अब कहने को अपने लोग बचे ही कितने हैं। वे कहते हैं कभी कभार आ जाया करो, अब कहने को अपने लोग बचे ही कितने हैं, यह खीरा और भिंडी लेते जाओ, अपनी ही बाड़ी के हैं। इस बार आम बहुत आए हैं, पकने पर हम लेकर आएंगे, माँ को बोल देना। और वापसी में एक झोला तरकारियों से भरा हमें पकड़ाते हुए वे कितने विह्वल दिखते हैं। बिजली के तार झूलते रहते हैं गरीब रिश्तेदारों के कच्चे पक्के घरों में, उनके बच्चों की हमें खबर नहीं होती, वे कब के चले गए हैं दिल्ली पंजाब कमाने, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं सरकार के मध्याह्न भोजन के साथ। बिजली के तार झूलते रहते हैं गरीब रिश्तेदारों के कच्चे पक्के घरों में, उनके बच्चों की हमें खबर नहीं होती, वे कब के चले गए हैं दिल्ली पंजाब कमाने, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं सरकार के मध्याह्न भोजन के साथ। वे दलालों से मिलते हैं और घिघियाते रहते हैं, वे दलालों से मिलते हैं और घिघियाते रहते हैं वृद्धा पेंशन और आवास योजना के लिए, पर हमारा जिक्र करते हैं बहुत उत्साह से, पर हमारा जिक्र करते हैं बहुत उत्साह से कि हमारा बड़ा मकान है शहर में और हम सब सरकारी नौकरियों में हैं। वह हमारा जिक्र करते हैं बहुत उत्साह से कि हमारा बड़ा मकान है शहर में और हम सब सरकारी नौकरियों में हैं, और हमारे मोबाइल फोन में उनका नंबर तक नहीं होता, और हमारे फोन मोबाइल फोन में उनका नंबर तक नहीं होता। एक छोटी सी कविता है, वे ही सोचा मिलकर ही कह देंगे कि नहीं आ सके आपके बेटे के ब्याह में, सोचा मिलकर ही कह देंगे नहीं आ सके आपके बेटे के ब्याह में, सारी तैयारी कर रखी थी पर इन वक्त पर आना मुलतवी करना पड़ा, फलाना काम आ पड़ा और कोई चारा नहीं था। जब खगेंद्र ठाकुर मरे पटना में, प्रेम प्रभाकर भागलपुर में, राम निहाल गुंजन आरा में, उनके अंतिम दर्शन करने आखिरकार जा ही सकता था। जब खगेंद्र ठाकुर मरे पटना में, प्रेम प्रभाकर भागलपुर में, राम निहाल गुंजन आरा में, उनके अंतिम दर्शन करने आखिरकार जा ही सकता था, यह ख्याल आता है अक्सर देर रात गए, यह ख्याल आता है अक्सर देर रात गए या आधी नींद के बीच, जैसे कोई पत्थर आज भी सीने में लुढ़कता रहता है आत्मग्लानि का भार लिए। कभी धूप बहुत तेज होती है, कभी जाड़ा ही आधमकता है। कभी धूप बहुत तेज होती है, कभी जाड़ा ही आधमकता है। कभी बारिश और हवा इतनी तेज की छाता संभाले नहीं संभलता। इस तरह से कई जरूरी मौकों पर जाना टलता रहा। अब सोचता हूं कि वे सारे बहाने ही थे, दुश्वारियों से बचने के लिए थोथे कुतर्क थे बस। अपने कवि होने की मानी पर शर्मिंदा होता हूं चुपचाप। ये वही लोग थे जो फोन कर लेते थे कभी भी, ये वही लोग थे जो फोन कर लेते थे कभी भी और कहते थे, बस ऐसे ही फोन कर लिया विनय, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला था। तुम्हारे पैर का दर्द अब कैसा है, घर का समाचार कैसा है, तुम्हारे भाई अब कैसे हैं। ये वही लोग थे जो फोन कर लेते थे कभी भी और कहते थे कि बस ऐसे ही फोन कर लिया विनय, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला था। तुम्हारे पैर का दर्द अब कैसा है, घर का क्या समाचार है, तुम्हारे भाई अब कैसे हैं। जो जेठ की तपती दोपहरी में किसी शव यात्रा में शामिल होते हैं, और जरूरत पड़ने पर आंधी पानी में जानकारी मिलते ही किसी तरह पहुंच जाते हैं अस्पताल, वे कौन है। जो जेठ की तपती दोपहरी में किसी शव यात्रा में शामिल होते हैं और जरूरत पड़ने पर आंधी पानी में जानकारी मिलते ही किसी तरह पहुंच जाते हैं अस्पताल, वे कौन है। दुनिया में इन्हीं लोगों ने बचा रखा है मनुष्यता पर भरोसा। दुनिया में इन्हीं लोगों ने बचा रखा है मनुष्यता पर भरोसा। रिश्तों के अर्थ बस इनसे ही बचे हैं, वे सच्चे हितैषी और नागरिक हैं हमारे बीच के, बस वे शब्दों की कारीगरी नहीं जानते। दुनिया में इन्हीं लोगों ने बचा रखा है मनुष्यता पर भरोसा। रिश्तों के अर्थ बस इनसे ही बचे हैं, वे सच्चे हितैषी और नागरिक हैं हमारे बीच के, बस वे शब्दों की कारीगरी नहीं जानते। वे सही समय पर पहुंचते हैं जहां पहुंचना होता है, बदहवास से पसीने से भरा रूखा चेहरा लिए और अस्त व्यस्त यह कहते हुए, अभी पता चला भाई साहब और सीधा चला आ रहा हूं। धन्यवाद।